मधुवन हमारे पूर्वजों से सुरक्षित होता आया है। ये मधुवन विश्वकर्मा ने बनाया है और इसमें लगने वाले फल और रस ये बहुत दुर्लभ है। देवताओं को भी इसका फल और इसका रस नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर इतने पराक्रमी बांदरों को हम रखते हैं कि कोई इसमें घुस न जाए, क्योंकि कोई भी राक्षस इसमें घुसेगा और इसके रस को और फल को प्राप्त करेगा तो वो अपनी शक्ति का बहुत बड़ा संचय कर लेगा और हम बांदर यूं ही रह जाएंगे। लक्ष्मण, बहुतों के पास अपने अपने शस्त्र होते हैं, किसी के शस्त्र हाथ में चलाने के होते हैं, किसी के शस्त्र फेंकने के होते हैं, किसी के क्या होते हैं। हमारे बंदरों के पास में ये मधुवन बहुत बड़ा शस्त्र है, क्योंकि इसके फल खा लेने के बाद हम में लड़ने की बड़ी अद्भुत शक्ति आती है। कोई विशेष अवसर पर ही इस मधुवन का उपयोग होता है और इसके लिए हमने श्रेष्ठ बानर दधिमुख को यहाँ रख रखा है। ये दधिमुख बानर शक्ति में मुझसे भी ज्यादा प्रबल है। लक्ष्मण जी, आज इन्होंने मधुबन के नष्ट होने की जो बात कही है उससे मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और हे लक्ष्मण जी, मैं आपको शुभ समाचार कह रहा हूँ, सीता की खोज हो चुकी है। यदि सीता की खोज नहीं होती तो इस मधुबन के अंदर इन बंदरों का प्रवेश कभी भी संभव नहीं था। सुग्रीव जी ने कहा, हे नाना, हे मामा जी, जाओ आप जो है बड़ी प्रसन्नता से वहां जाओ। धर्षितम मर्षक जो चाहे कुछ भी करे, चाहे वो खाए पिए कुछ भी करे, उनको छूट है। हनुमान आदि सारे बंदरों ने जो कार्य किया है उसके ऊपर आज आप क्षमा कर दो, मैं भी क्षमा करता हूँ, आप भी क्षमा कर दो। आप वहाँ जाकर के इन प्रधान प्रधान हनुमान आदि बांदरों से कहो कि भैया आप तुमको जल्दी बुला रहे हैं, और तुम लोग शांति से उनको बोलना कि सीता की प्राप्ति के समाचार को सुनने की राम के, लक्ष्मण के और सुग्रीव के मन में बड़ी जो प्रबल इच्छा हो रही है, तुम लोग जल्दी से जल्दी जाओ। अब वे वहां से रवाना हुए, दधिमुख वगैरह वहां से रवाना हुए और जल्दी ही वे वहां पहुंच गए मधुबन में। मधुबन में जाकर वे जोर से चिल्लाए, ओ बेटा अंगद, ओ हनुमान, ओ जामवंत जी, मैं बड़े प्रेम से बोलता हूँ, मेरे मन में कोई रोष नहीं है। देखो मेरे बांदरों ने, मेरे रक्षकों ने तुम लोगों का कोई अपमान कर दिया हो तो भाई आप लोग क्षमा करना, और जिसने जितना मधु पी लिया है, मधुरस ले लिया है, और यदि वो तृप्त हो गया है तो आप लोग अब सुग्रीव जी के पास पहुंच जाओ। मैंने आपको रोका, मेरे साथियों ने आपको रोका, ये मेरी मूर्खता थी, तद भवान क्षंतु मर्रति, आप क्षमा कर देना और इस बात को आप रोष में मत लाना। आपको सुग्रीव जल्दी याद करते हैं, राम जी आपकी प्रतीक्षा करते हैं, और लक्ष्मण जी भी वहाँ थे वो भी आपकी प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने तो यही कहा कि जल्दी से जल्दी यदि बांदर तृप्त हो गए हो तो आप भेज दीजिए, तो आप में जो तृप्त नहीं हुआ वो और कुछ खा लो पी लो, और यदि तृप्त हो गए हो तो आपको जल्दी महाराज सुग्रीव राम लक्ष्मण के पास बुला रहे हैं। अंगद जी ने उस समय में दधिमुख के वचनों को सुनकर के कहा, ओहो बांदरों, इसका मतलब है कि राम जी को हमारे यहाँ आने के समाचार दधिमुख जी के द्वारा सुग्रीव के पास पहुँचने से पहुँच गया है। ये देखो दधिमुख कितने प्रसन्न दिखाई देते हैं, इसका मतलब कि सुग्रीव बड़े प्रसन्न हैं। आओ चलो, अपन ने खा लिया पी लिया और अपने जो काम करना था वो कर लिया, अतएव अब अपने को राम जी की तरफ चलना चाहिए। देखो मैं कोई आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, युवराज हूँ फिर भी आज्ञा देना नहीं चाहता हूँ, मैं तो आप लोगों के साथ में एक विचार रख रहा हूँ। अंगद की बात सुनकर के बंदरों ने कहा कि वाह वाह अंगद जी, ये खूब हुई, आप हमारे युवराज हो, हमारे सेनापति हो, और आप इतनी सरलता की बात क्यों कहते हो? यहाँ हम लोगों को आप आदेश दीजिए, आदेशात्मक बात से सेना के अंदर एक बिजली की तरह से बात फैलती है और वहाँ वो बात का पालन बहुत जल्दी होता है। इतने सरल है आप, सब कुछ होते हुए भी कितनी सरलता की बात करते हैं। अंगद ने कहा अच्छा चलो अपने लोग आकाश से उड़ते हुए चलते हैं। अब सब बंदर वहां से खाए पिए तो थे ही, खूब आराम से आकाश में उड़ते हुए चले। और सब बंदर किलकारियां मारते मारते जा रहे थे, उनके नाद हो रहे थे, उनके शब्दों को सुग्रीव ने सुना और शोक संतप्त श्री राम से कहा, महाराज राम आपकी जय हो, सीता की खोज हो चुकी है, आप अपने मन के अंदर धैर्य धारण कीजिए और देखिए कि अंगद कितने हर्ष से किलकारी मार रहे हैं, ये देखो बहुत जल्दी मेरी ओर आ रहे हैं। युवराज महाबाहु अंगद ये देखो सेना में सबसे आगे उड़ते हुए आ रहे हैं, ये देखो इनके पास में हनुमान जी हैं, ये देखो इनके पास में नल नील आदि सारे बानर आ रहे हैं, ये देखो इनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है, ये मधुवन का रस पी करके आए हैं। हे महाराज कौशल्या ने आपको जन्म देकर बड़ा गौरव प्राप्त किया है, सीता की खोज हो चुकी है इसमें कोई संदेह नहीं है, हनुमान ने आपकी आज्ञा का पालन किया इसमें कोई संदेह नहीं है, हनुमान इस कार्य को करेगा ही, हनुमान के अंदर सिद्धि न हो ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं है, हनुमान का व्यवसाय कभी व्यर्थ नहीं होता है, हनुमान का इस प्रकार से उधर जाना हमारे लिए कितना लाभप्रद हुआ है। जामवंत जैसा नेता हो, अंगद जैसा सेनापति हो, हनुमान जैसा परमवीर जिनके साथ हो, तो फिर उस कार्य के अंदर कहाँ संदेह होता है। अब आपको देखो हे राम चिंता छोड़ देनी चाहिए, चिंता छोड़ करके और अब आपको आगे के विषय में क्या करना चाहिए वो सोचना है। मेरे मधुवन को नष्ट करने पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, ये देखो किलकारियों के शब्द से अपना काम हो गया है और किष्किंधा की तरफ ये आए हैं, और ये देखो जैसे ये सिद्धि नीचे उतर रही हो ऐसा मालूम देता है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की ओर, अंगद की ओर, दूसरे बांधवों की ओर, जामवंत जी की ओर दृष्टि जमाते हुए सुग्रीव जी किष्किंधा की ओर देख रहे हैं, और उधर से बड़े वेग के साथ वो बांदर सेना आ रही है, और आते 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 वो बांदर सेना सीधी प्रस्रवण पर्वत पर आकर खड़ी हो जाती है, और आते ही उस बांदर सेना ने राम जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, सुग्रीव जी को प्रणाम किया, और उनमें हनुमान आगे आए, राम जी के चरणों में, सुग्रीव के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते इतना ही कहा कि सीता जी के दर्शन हो चुके हैं। ये सुनते ही हनुमान जी की आंखों में आंसू आने लग गए, राम जी महाराज भी हर्ष से गदगद हो गए। गदगद होने के बाद राम जी महाराज ने सुग्रीव को अपने छाती से लगाया और कहा कि सुग्रीव हमने तो बाली के लिए इतना प्रयत्न नहीं किया था, हम तो पास में जाकर बाली को मार के आए थे, लेकिन तुमने हमारे लिए कितना प्रयत्न किया है। बड़े प्रेम से राम जी ने सुग्रीव को अपने छाती से लगाया और राम जी महाराज बड़े सम्मान के साथ हनुमान जी को देख रहे हैं। वो प्रस्रवण पर्वत बड़ सुंदर है और राम जी महाराज, लक्ष्मण, युवराज अंगद, सुग्रीव ये सब बैठ गए हैं। उस समय में हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा, उसमें सब बंदरों ने, हनुमान जी ने नहीं सब बंदरों ने कहा, महाराज रावण के अंतपुर में राक्षसों से डरी हुई सीता के दर्शन हो चुके हैं। राम जी महाराज हंसे कि देखो इन सब बंदरों को, देखो ये बंदर कितने भोले हैं, काम तो हनुमान जी ने किया है, सब बंदर बता रहे हैं। राम जी बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा अच्छा बंदरों, वो सीता कहाँ है, कैसी है, हम जरा हमको बताओ तो कहाँ है कैसी है। तो बंदर हनुमान जी की तरफ देखने लगे कि आप बताओ भाई। तो जो है हनुमंतम प्रेरयन्ति, वो सब बंदर हनुमान जी की तरफ देखे, तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके और राम जी को प्रणाम किया, सुग्रीव जी को प्रणाम किया और जिस सीता में, जिस दिशा में सीता जी थी उस दिशा को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा महाराज मैंने समुद्र का लंघन किया, सुयोजन का ये समुद्र था, वहां जाकर मैंने लंकापुरी को देखा, लंका एक पर्वत के ऊपर है और रावण के अंतःपुर में मैंने सीता को देखा था और वो सीता राम राम इस प्रकार से आपका जाप कर रही है। सीता के पास में बहुत सी राक्षसियां, बहुत क्रूर राक्षसियां चारों तरफ से उसको घेरे हुए हैं। रावण के अंतपुर में वो रहती है। एक जटावन एक वेणी वाली सीता आपके लिए बड़ी चिंता कर रही है। पृथ्वी पर ही सोना, कभी नहाना नहीं, कभी भोजन करना नहीं, शोक के अंदर डूबे रहना, ये सीता जी की दिनचर्या बन चुकी है। सीता जी के पास जब मैंने आपके इक्ष्वाकु वंश के विस्तार की बात कही और यहाँ मैंने आपके विषय में कुछ कथा कही, तब उसको ऐसा आश्वासन मिला और ऐसी चेहरे के ऊपर प्रसन्नता छाई कि जैसे कोई मुरझाई हुई लता को जल मिल जाए और कोई आश्रय मिल जाए। फिर उस देवी ने मेरी से बातचीत की। बातचीत करने के बाद उस देवी ने मैंने आपका ये अभिज्ञान दिया, अंगूठी दी। अंगूठी देने के बाद फिर सीता जी ने भी मुझे एक अभिज्ञान दिया है, एक मणि दी है और मणि देकर के साथ में एक घटना भी बताई है। कोई कौवे वाली कोई घटना हुई थी। राम जी ने कहा हाँ तुम कहते जाओ। वो कौवे वाली घटना कही थी। राम जी महाराज सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हे वायुपुत्र, तुम राम को जाकर बोलना कि मैंने सीता को देख लिया है और उनको ये मणि दे देना और सुग्रीव को भी सुनाते हुए कहना कि ये मेरी मणि है और ये सीता के यहाँ से मैं लाई हूँ और मैन शिला का जो तिलक है उसकी भी याद दिला देना। कल बताया ही था वो तिलक था वो माथे पर लगा हुआ मिट गया था, फिर राम जी ने उसको और ढंग से लगाया था। ये बात सीता जी ने कही थी। तो कहा कि उसकी भी याद दिलाते हुए बोलना और कहना कि ये आप सागर को कैसे पार करेंगे और कैसे आप लंका में आएंगे, किस प्रकार से मेरा उद्धार होगा, इसका तो अब आप ही जाने। मैं तो अब 2 महीने के अंदर मरने वाली हूँ। 2 महीने में राक्षस लोग मुझे मार देंगे। उसके बाद फिर विलंब करने से, फिर यहाँ आने से मुझे तो कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। आप जल्दी से जल्दी आइए, एक तरफ जल का सागर आप पार कीजिए और दूसरी तरफ मुझे शोक सागर से निकाल दीजिए, उबार दीजिए। इस प्रकार से कहकर के हनुमान जी महाराज ने वो मणि थी वो राम जी को दे दी। राम जी महाराज मणि को लिए और राम जी महाराज प्रेम में डूब गए। लक्ष्मण के साथ राम जी महाराज को बड़ा विलाप हुआ और बार बार राम जी महाराज अपने नेत्रों को पूछ पूछ करके और सुग्रीव को कहते हैं, देखो सुग्रीव, जिस प्रकार एक बछड़े को देख करके गाय का मन स्नेह में डूबता है, उसी प्रकार से इस मणि को देखकर मेरे मन में सीता के प्रति अपार स्नेह उमड़ रहा है। ये वो मणि है जिस मणि को एक बार इंद्र ने हमारे महाराज जनक जी के बहुत बड़े यज्ञ करने पर बड़ी प्रसन्नता से दिया था। ये वो मणि है कि जो मणि सागर से समुद्र मंथन के समय में निकली थी। वो मणि हमारे ससुर जी के पास आई थी। हमारे ससुर जी ने विवाह के समय में ये मणि सीता को दी थी और सीता को ये मणि हमारे सामने उनकी माँ ने उनके सिर के ऊपर स्थापित किया था और इसके स्थापित करने के बाद मैंने सीता से कहा था कि हे सीते, इस मणि के द्वारा तुम्हारी बड़ी निराली शोभा हुई है, इसलिए इस मणि को देखकर मुझे मेरे विवाह की याद आई है। देखो लक्ष्मण, ये वही मणि है ना, तुम भी तो वही थे। लक्ष्मण जी ने उस मणि को देखा और सीता के सिर पर धारण करने के कारण से लक्ष्मण जी ने उस मणि को प्रणाम किया और उसके बाद राम जी महाराज शोक में डूबते हुए कहने लगे, बंदरों अब मुझे आप लंका में छोड़ आओ, आप मुझे बताओ कि सीता कहाँ है, आप लोगों के प्राण में संकट में डालना नहीं चाहता हूँ, अब आप मुझे जल्दी से जल्दी लंका में ले चलो, आवृतो वदनम तस्या न राजति सांप्रतम। अरे उसने मणि भेजकर मुझे ये बताया है कि मेरे पास जो कुछ सौंदर्य था, मेरे पास जो श्रेष्ठता थी, मेरे पास जो विशेषता है, वो सब आपको अर्पित है। हनुमान, सीता के बिना मैं नहीं रह सकता। सीता ने और क्या क्या समाचार कहे जल्दी सुनाओ। हनुमान, जिस प्रकार से बीमार आदमी को जल्दी से जल्दी दवाई देनी चाहिए, उसी प्रकार से सीता के स्नेह में डूबे हुए मेरे हृदय को आप सीता के संदेश रूपी औषध के द्वारा जल्दी ही शुद्ध कर दो। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, सीता ने मुझे कहा कि चित्रकूट पर वो जो वायस कथा थी, वो कह रही थी कि मैं राम जी के साथ में सोई भी थी, उनके गोद के अंदर अपना सिर रख कर के सोई भी थी। उस समय में वो कौवा मुझे पहले तो देख रहा था, लेकिन जब मैं राम जी की गोद में सोई थी तब वो उधर फटका भी नहीं, और जब राम जी को नींद आने लगी तब मैं राम जी को अपने गोद में सुला करके और वहाँ राम जी की हवा कर रही थी, उस समय में वो कौवा आया और कौवा आकर के और मेरे छाती में चोंच लगाए, पंजे लगाए, तो उससे मेरे छाती से खून निकलने लगा, लेकिन मेरे प्राणनाथ की नींद न टूट जाए इसलिए मैंने अपने छाती को यूं ढक लिया ताकि इसकी खून की बूंद इन पर न जाए। और ऐसे करते जब राम जी की नींद खुली तब उन्होंने मेरा एक घाव देखा। घाव देखते ही उन्होंने एक तिनका उठाया, तिनका उठाकर उसको ब्रह्मास्त्र बना करके और उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। अब वो कौवा लोक लोकांतर में घूमा, लेकिन कहीं उसको शरण नहीं मिली। अंत में उसको राम जी की शरण लेनी पड़ी। राम जी के पास आया, उन्होंने एक आंख उसकी जो है समाप्त करके ब्रह्मास्त्र की भी रक्षा कर दी और कौवे की भी रक्षा कर दी। वो नमस्कार करके चला गया। देखो हनुमान, एक कौवे को जो क्षमा नहीं कर सके, वो कौवा इंद्र का पुत्र था उसको भी क्षमा नहीं कर सके, शस्त्र न हो करके भी एक तिनके को जिन्हें शस्त्र बनाया था, आज देखो वो राम मुझे क्यों नहीं प्राप्त करने के लिए उद्योग कर रहे हैं। मैं इस समय में बहुत संकट में हूँ, देवताओं को भी संकट में डाल देने वाले ये राम और लक्ष्मण मेरे कौन से पाप को देख करके मेरे से मुंह मोड़े हुए हैं कि वो मेरी सुध भी नहीं ले रहे हैं और वे मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरे पास कोई साधन भी तो नहीं है। सीता जी के ये वचन है महाराज। और फिर मैंने सीता जी को बहुत कुछ कहा। मैंने कहा कि माता जी आप चिंता मत करो, मैं सत्य की सौगंध खा के कहता हूँ, राम जी आपके शोक में डूबे हुए हैं, लक्ष्मण जी भी शोक में डूबे हुए हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आप कहाँ हो और आप इस समय लंका में हो, इस बात का उनको ज्ञान नहीं है। जिस दिन इस बात का ज्ञान होगा उस दिन वे लंका को भस्म कर देंगे और आपको ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने बालों में से ये चूड़ामणि निकाली और चूड़ामणि निकाल करके उन्होंने मुझे दिया। मैं जाने के लिए तैयार हुई तो वो फूट फूट करके रोने लगी, मुझे कहने लगी कि हनुमान मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं राम के बिना नहीं रह सकती। तो फिर मेरे मन में आया ये बिचारी नहीं रह सकती तो इनको मैं ले चलूं। मैंने कहा कि सीता जी, माता जी आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको अभी राम जी के पास ले जाती हूँ, ले जाता हूँ। तो वो सीता बोली, नहीं सो धर्म है महाकपे, हे महावीर हनुमान ये धर्म नहीं है, मैं तुम्हारी पीठ पर जाऊं, इसमें न मेरा धर्म है न तुम्हारा धर्म है और न इसमें राम का भी कोई कल्याण, राम जी का भी कोई श्रेय होने वाला है, यश बढ़ने वाला, ऐसी बात भी मैं नहीं देखती हूँ। हे वानर श्रेष्ठ जाओ, तुम तो केवल इतना ही कहो कि आप लोग जल्दी जाओ और जल्दी आप लोग जल्दी आओ और मुझे इस शोक सागर से दूर करो। सुग्रीव जी से कहना, सुग्रीव जी अब आप अपने बंदरों की सहायता से आ जाओ और आकर के और आप राम जी जो दुख के अंदर डूबे हुए हैं और मैं भी दुख में डूबी हुई हूँ, हम दोनों का आप उद्धार करो। ये बात जब कही तो कई राक्षस राम कई राक्षस थे वे चारों तरफ से उनको घेरे हुए थे, राक्षसियां घेरी हुई थी और कहा कि देखो ये राक्षसियां मुझे बराबर डराती रहती हैं, इन राक्षसों के मेरे दर्शन करने के लिए तो कितने कितने रानियां कितने बड़े बड़े लोग मुझे देख नहीं सकते थे, आज मैं राक्षसों से डराई जाती हूँ, देखो कैसा मुझे दिन आया है, परंतु ये दिन आए तो देखने पड़ेंगे, लेकिन महावीर हनुमान जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, इस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद मैंने उनको प्रणाम किया, उनका कुशलक्षेम पूछा और फिर मैंने कहा कि और मुझे क्या कहना चाहिए, तब उन्होंने एक ही बात कही कि आज आज तुम यहाँ ठहर जाओ, कल तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि आज तुम आए हो थोड़ी देर मिले हो, मुझे कितने दिनों का दुख है वो थोड़ी देर के मिलन में मैं कैसे दबा सकती हूँ, आप कई देर रहो, एक दिन तो कम से कम रहो, बात करो तो मेरे कई दिनों का दुख दूर हो जाए, प्राणानाम अपि संदेहो ममस्यान मात्र संशय है, और कहा कि देखो अब मुझे प्राणों का संशय पड़ गया है, मेरे प्राण क्या पता कब तक रहेंगे, हनुमान तुम वायु और वैन्ते गरुड़ तीन ही तो सागर को पार कर सकते हो, और कौन सागर को पार कर सकता है, सागर को पार करना बड़ा मुश्किल है, इस सागर के पार की वो बड़ी चिंता कर रही थी और चिंता करते हुए कहा कि राम यहाँ लंका में सागर को पार करके कैसे आएंगे, उनकी सेना कैसे आएगी, और वे विचार करने लगे उनके आए बिना मेरा इस प्रकार से उद्धार भी कैसे होगा, मैंने कहा कि देवी आप मेरे विषय में तो निश्चिंत होना कि मैं सागर को पार कर सकता हूँ, क्यों नहीं, तुम तो आए ही हो ना, तो मैं जैसे आया हूँ ऐसे सुग्रीव के पास मेरे से मेरे समान और मेरे से बढ़कर करोड़ों करोड़ों बांदर हैं, बांदरों की कोई संख्या नहीं है, मैं उनका एक सेवक हूँ, सेवक वो होता है जो छोटा सा काम करने वाला होता है, छोटा मोटा काम, इधर की वस्तु उधर रख दे, उधर की वस्तु उधर रख दे, जिसमें कोई अकल भी नहीं होती और जिसमें कोई ज्यादा जो है बल भी नहीं होता, छोटा सा काम उसको सुपुर्द कर दिया जाता है, मैं तो छोटा काम करने वाला हूँ, क्योंकि दूध पना तो बहुत छोटे आदमी का काम होता है, एक छलांग से लांगने वाले कितने ही हैं, और जहाँ तक यदि आपको राम और लक्ष्मण कैसे पार करें तो मेरी पीठ पर बैठ के पार हो जाएंगे, इसलिए आप कोई चिंता मत करो, आप थोड़े दिनों में राम लक्ष्मण सुग्रीव और उनकी सेना को लंका के दरवाजे पर किलकारियां मारते सुनोगे, और ये राक्षस लोग मर गए, हमको इन बांदरों ने मार दिया, हम रावण के पाप के कारण से मर गए, ऐसी ऐसी आप आवाज सुनते रहोगी और आपका तो दुख दूर हो जाएगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। हनुमान जी की बात सुन करके राम जी महाराज के मन में अपार प्रसन्नता हुई और राम जी महाराज फिर कहने लगे, हे हनुमान तुमने बड़ा परिश्रम किया, तुमने संसार में बड़ा दुर्लभ कार्य किया है, मैं मन से भी ये बात सोच नहीं सकता था, इतने बड़े समुद्र को तुम छलांग लगा के पार हो गए, सीता का ये कहना तो बिल्कुल सही है कि तुम तीन के अलावा कोई इसको पार नहीं कर सकते, लंका वास्तव में ऐसी जगह पर बनी हुई है जहाँ कोई हर व्यक्ति जा नहीं सकता है, हर प्राणी जा नहीं सकता है, अब सोचो तो सही इन राक्षसों से द्वारा रक्षित लंका में अपने लोग कैसे जा सकते हैं, हनुमान के समान कौन ऐसा बल पराक्रम से संपन्न हो सकता है, हनुमान तुमने तो सुग्रीव का बहुत ही विलक्षण कार्य किया है, सुग्रीव के आदेश का पालन तुमने बहुत ही श्रेष्ठ ढंग से किया है, देखो भृत के वो अभी देखो लंका के जलाने की बात राम जी के सामने कही नहीं, लंका के जलाने की बात किसी बंदर ने कोई राम जी के सामने कही नहीं, राम जी बोलते हैं कि देखो श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ भृत के वो होता है कि जो अपने स्वामी के कार्य को कर देता है और स्वामी जी स्वामी के कार्य को करने के बाद उसका सहकारी भी कर देता है, दूसरा काम भी साथ में कर देता है, बिना कहे कर देता है, बिना कहे करता है, अनुराग पूर्वक करता है, वो उत्तम से उत्तम सेवक होता है, मध्यम सेवक वो होता है जो कह दिया वो काम कर दिया, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं करते, वो होता है मध्यम प्रकार का सेवक। और अधम वो होता है कि राजा ने कह दिया लेकिन फिर भी प्रमाद से नहीं किया, आलस से नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, अरे क्यों नहीं किया कि नहीं किया, ऐसे अधम अधम व्यक्ति होते हैं। हनुमान ने तो भाई जिस काम के लिए कहा था वो काम भी कर दिया और सुग्रीव का काम भी पूरा कर दिया, हमको भी बड़ा प्रसन्न किया। मैं मेरा रघुवंश, मेरा लक्ष्मण, मेरी सीता, इन सब की आज रक्षा हो चुकी है। हे बांधव सुनो, मैं कितना शोकाकुल हूँ, मेरा मन कितना सीता के शोक में डूबा हुआ है, मैं कह नहीं सकता हूँ। न कुर्मी सदृशम प्रियम, यदि यहाँ प्रियाख्यातुर न कुर्मी सदृशम प्रियम, जैसा प्रिय कार्य आज मुझे सुनाया गया है इसके बदले में मैं कोई भी प्रिय कार्य आपके लिए कर नहीं सकता हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है। आहो, संसार में प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप है तो वो मिलना है, आलिंगन है। आओ हनुमान आओ, मैं तुम्हें अपने छाती से मिलाता हूँ, इससे बढ़कर मेरे पास देने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। आओ हनुमान। राम जी महाराज टप टप आंसू लिए हुए हनुमान जी को अपने छाती से लगाए और राम जी महाराज के आंसू के मिल गए। उसके बाद राम जी ने सब बंदरों के बीच में सुग्रीव आदि सबको कहा कि भाई अब एक बात है, सागर को कैसे पार करेंगे, ये समुद्र तो बड़ा दुष्पार है, इसका पार करना बड़ा मुश्किल है, सारे बांदर अपने लोग कैसे चलेंगे, इसके विषय में आप लोग क्या सोचते हैं। राम जी महाराज जब इस प्रकार शोक में डूब गए, हनुमान जी की तरफ देखा और फिर राम जी चुपचाप बैठे ध्यान मग्न हो गए। इस शोक में डूबे हुए राम जी को अब शोक को दूर करने के लिए सुग्रीव जी ने उनको कहा, हे महाराज आपकी ये राम कथा कहां तक पहुंच चुकी है, आज तक आपके कौन से काम में रुकावट आई है, आप जैसे परमवीर सामान्य पुरुषों के समान हतोत्साहित कैसे हो रहे हैं, आप संताप को दूर कीजिए। जिस प्रकार से एक कृतज्ञ आदमी सौहार्द को भूल जाता है उसी प्रकार से आप जैसा श्रेष्ठ महापुरुष, वो महापुरुष शोक को भी भूल देना चाहिए। क्या उदाहरण दिया है, कृतज्ञ कृतज्ञ एव सौहृदम्, कृतज्ञ व्यक्ति उपकार को भूल जाता है, ऐसे आप जैसा मनस्वी पुरुष, वो मनस्वी पुरुष शोक को भूल जाओ, भूलना है तो इनका उदाहरण दिया है। कोई आदमी किसी को उपकार करे और उसको याद भी दिलावे ना कृतज्ञ को, क्या इतनी बढ़कर बात करते हो, तुम जब संकट में थे तो हमने तुम्हारी कितनी सहायता की, अरे की होगी तो की होगी तुमने, और याद दिलाने पर भी वो उसको स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही कृतज्ञ पुरुष जैसे उपकार को सौहार्द को भूलता है, ऐसे आप शोक को भूल जाइए। आपके लिए अब संताप करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको शत्रु की जगह मिल गई है, इतने दिन तक तो हमारे लिए बड़ा भारी भूमंडल पूरा का पूरा संदेह में था कि रावण कहाँ है, सीता कहाँ है, अब अपना एक जगह केंद्र बिंदु बन गया है। और हे महाराज आप बड़े पंडित हो, शास्त्र जानने वाले हो, मतिमान हो, आप हमारी सेना में सब कुछ आप हो, आप इस शोक को पार हो जाओ, और शोक को पार हो जाएंगे तो समुद्र का लंघन तो बहुत छोटा काम है, लंका के ऊपर युद्ध करना बहुत छोटा काम है, लेकिन शोक को पार करना बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। निरुत्साही व्यक्ति के लिए, शोकाकुल में पड़े रहने वाले के लिए बिना होते हुए भी आफत आती रहती है। देखो शोकाकुल आदमी तरह तरह की आपत्ति आपत्ति की बात सोचता है, अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता, इतना होता नहीं है, पर वो सोचता ही रहता है। तो महाराज जिसके मन में शोक रहता है वो शोकाकुल व्यक्ति कितना ही दुख उसमें आता ही रहता है, और जो उत्साही व्यक्ति होता है उसको कोई कहे कि वो कष्ट है, काय का कष्ट है, कुछ नहीं है, ऐसे करके वो कितनी आफत को वही समाप्त कर देता है। इमे शूरा समर्था, ये बानर बड़े समर्थ है, श्रेष्ठ है, आपका प्रिय कार्य करने के लिए ये आग में भी कूद सकते हैं, आपके लिए क्या नहीं कर सकते, आपके लिए प्राण भी न्योछावर कर देते हैं। और मेरे अंदर बड़ा हर्ष पैदा हो रहा है, इस हर्ष से मेरे अंदर ये बात दृढ़ होती जा रही है कि सीता को हम ले आएंगे, रावण मारा जाएगा, अंतिम विजय आपकी होगी। आपने कहा कि समुद्र को कैसे पार करें, तो एक युक्ति समझ में आ रही है, समुद्र के ऊपर एक पुल बना दिया जाए, उस पुल के बन जाने से तो हमारा छोटे से छोटा सैनिक आराम से वहां पहुंच जाएगा, लंका में पहुंच जाएगा। राक्षस राज रावण भी आश्चर्य करेगा कि आज तक किसी ने पुल नहीं बनाया और ये पुल बना दिया इन्होंने। दृष्ट्वा ताम पुरीम लंकाम त्रिकूट शिखरे स्थिताम हतंच रावणम युद्धे दर्शनार्थ अवधार है। और दूसरा कोई हमको उपाय दिखता नहीं है, यदि लंका के वहां तक पुल बन जाएगा तो हम देखते ही लंका के ऊपर टूट पड़ेंगे और उस युद्ध के अंदर रावण को हम मार देंगे। बिना सेतु बनाए हुए